जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद भगवत गीता की जय गौर निताई की जय श्री श्री राधा श्याम बॉडी फ्री एज अ सोल हरी हरि बोल हरी हरि बोल जय श्री कृष्ण मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा जय श्री राधे कृष्ण हर हर महादेव जय माता की। तो फ्रेंड्स आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स हम सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और इस प्रक्रिया में हमारा सरल भगवद गीता का कोर्स भी आरम्भ हो चुका है ना, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। और इसके लिए हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है ना, घर बैठे बैठे हमारी ऐसी आध्यात्मिक यात्रा ऐसी तीर्थ यात्रा हमारी आरंभ हो चुकी है। तो आज के वर्सेस में जाने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी बुद्धि में परमात्मा विराजमान हो, अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं ताकि हम सब उनकी वाणी को उनके इंस्ट्रक्शंस को और उनके गीत को अच्छे से समझ सके और अपने जीवन में अपना कर खुश रह सके। सबको पता है कि हम लोग चैप्टर 2 अध्याय 2 अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली चैप्टर कर रहे हैं, है ना। भगवद गीता सारे शास्त्रों का सार है और अध्याय 2 पूरी भगवद गीता का सार है। तो इसपे हमने कल दो वर्सेस किए थे 55 और 56, तो उनको पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसको 54 वर्स से लेते हैं। 54 श्लोक में हमने समझा था कि अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, जो बहुत ही स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन्स होते हैं, भगवान के अलावा उनको और कुछ नहीं दिखता है ना, उनके मतलब विचार और उनकी बुद्धि परमात्मा में दृढ़ हो चुकी होती है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, अर्जुन का क्वेश्चन है भगवान श्री कृष्ण। तो वो कह रहा है कि भी ऐसा स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, मतलब उसका व्यवहार कैसा होता है। तो अब भगवान स्थिर बुद्धि वालों का व्यवहार कैसा होता है, अब भगवान ही बात कर रहे हैं। इस चैप्टर के लास्ट तक भगवान बताते रहेंगे कि स्थिर बुद्धि वालों के क्या लक्षण होते हैं। 41 वर्स से लेकर आगे 4-5 वर्सेस हमने रीड किए थे, उसमें भगवान ने अस्थिर बुद्धि वालों के लक्षण बताए थे और अब हम 55 वर्स से भगवान हमें स्थिर बुद्धि वालों के लक्षण कैसे होते हैं, वो कैसा व्यवहार करता है, उसकी पहचान हम कर सकते हैं। मतलब जो बहुत स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्संस हैं, जो मतलब बहुत महात्मा लोग होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, है ना, उनके बारे में हम जान सकते हैं, भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो 55 वर्स में भगवान ने कहा था, जो व्यक्ति जितना सांसारिक कामनाओं का वर्ल्डली डिजायर्स का त्याग कर दे, है ना, कि मुझे ये भी चाहिए मुझे वो भी चाहिए, और उसके पास जो है उसमें वो संतुष्ट हो जाए तो वे स्थिर बुद्धि वाला पुरुष। तो हम भी अपने असेसमेंट कर सकते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हमें अपनी ग्रोथ को चेक करना है तो अगर हमारी वर्ल्डली डिजायर कुछ कम हो रही है, मान लो पहले 100% थी अब थोड़ा 50% आ चुकी है, अगर हमारा वर्ल्डली डिजायर का ग्राफ थोड़ा नीचे आ रहा है ना, और हम भगवान की रजा में राजी रहना सीख रहे हैं, कितने संतुष्ट हो रहे हैं हम अपने जीवन में, है ना, तो उससे हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम संतुष्ट रहना सीखते हैं फ्रेंड्स, तभी हम ट्रू सेंस में हैप्पी रह सकते हैं। सिंपल भगवान हमें ये समझा रहे हैं, हैप्पी रहने का, खुश रहने का मंत्र हमें बता रहे हैं कि जो जिसके पास है उसमें संतुष्ट रहना। तो 56 वर्ष में भगवान ने हमें कर्म करते हुए हमारा भाव कैसा होना चाहिए वो बात बताई है। एक्चुअली कर्मों में भाव की बहुत इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स। जैसे हम अगर हाउस वाइफ है, देखो मैं बार बार एग्जांपल वही देती हूँ, घर का काम हमें करना पड़ता है, करना ही पड़ना है, है ना, क्योंकि असाइन ड्यूटीज है ना। अगर हम हाउस वाइफ है तो हमारा ड्यूटी है ना घर के काम करना और बच्चों को अच्छी संस्कार देना, ये हमारी ड्यूटी है। तो इसको या तो हम रो रो के कर ले या इस भाव से करें कि भाई परमात्मा ने मुझे ड्यूटी दी है तो मुझे इसको बेस्ट वे में करना है, क्यों रो रो के करना है। और भगवान ने कहा है कि रो रो के नहीं अपनी ड्यूटीज करनी। देखो भाव ही चेंज हो जाता है ना जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, बार बार हम जब ये चीजें सुनते हैं तो हमारा भाव भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। देखो भाव बदलने से हमारा कर्म भी बदल जाता है। बाहर से हम कितना भी अच्छे से काम कर लें लेकिन अंदर से हमारा रोने की अगर प्रवृत्ति है उसका फल भी उसी प्रकार से मिलता है ना। इसलिए बोलते हैं ना कि जो अंदर होता है ज्यादातर लोगों का वो बाहर नहीं दिखता है ना। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मतलब भी यही होता है कि फ्रेंड्स जैसे आप अंदर हो वैसे ही आप बाहर। भगवद गीता पढ़ते हुए आपका भाव ही बदलता है। जो चीजें हम रो के करते थे अब क्या होता है, नहीं भगवान ने मुझे ये ड्यूटी दी है तो मुझे अपने सारे काम बेस्ट वे में करने हैं, है ना। चाहे वो बच्चों की अपब्रिंगिंग है या घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, अपने बड़ों की सेवा करनी है, छोटों के लिए कुछ काम करना है, तो भाव बदलना कि मेरी ये ड्यूटी है तो मुझे बेस्ट वे में करना है, सिंपल है ना। तो भगवान ने 56 वर्ष में हमें कर्म करते हुए हमारा भाव क्या होना चाहिए वही बात की है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन दुखों में व्याकुल नहीं होता, दुख मतलब मन के विपरीत कुछ हो जाना, मन के विपरीत फल मिल गए या फिर किसी से निंदा मिल गई, लेकिन तब भी मन का व्याकुल नहीं होना, है ना। और जो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष होता है वो समझ चुका होता है कि उसका कर्तव्य है दूसरों के हित के लिए कार्य करना, कर्मों के फलों से उसको कोई अटैचमेंट नहीं रहती, उसको समझ आ चुका होता है कि वो डिपार्टमेंट उसका नहीं है, उसका काम है अपना जो ड्यूटीज है उसको बेस्ट वे में करना, है ना। और जो ड्यूटी मैं कर रही हूँ उसके जो फल हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो परमात्मा के कंट्रोल में है ना। तो कर्मों के फल से उसको कोई अटैचमेंट नहीं रहती, तो ऐसा करने से उसके मन में प्रसन्नता बनी रहती है, फिर उसका मन व्याकुल नहीं होता दुखों से, है ना। मतलब कोई अनफेवरेबल रिजल्ट मिलता है अगर उसको, कोई उसने काम किया लेकिन उसको जो रिजल्ट है वो अनफेवरेबल मिला या उसको निंदा मिल गई अपमान मिल गया, तब भी उसका मन व्याकुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो समझ चुका होता है उसका कर्तव्य है अपने कर्मों को बेस्ट वे में करना, दूसरों के हित के लिए कार्य करना, है ना। ऐसा करने से उसके मन में प्रसन्नता बनी रहती है और उसका मन व्याकुल नहीं होता दुखों से। फिर भगवान ने कहा कि जो सुखों की अभिलाषा नहीं करता, मतलब जो फेवरेबल रिजल्ट मिल जाए, अनुकूल जो हमें फल मिल जाए, मान लो मान सम्मान मिल जाए, किसी से अप्रिसिएशन मिल जाए, उसको ये समझ होती है, उसको ज्ञान मिल चुका होता है एक स्थिर बुद्धि वाले पुरुष को कि ये ऐसी परिस्थितियां, जो भी ये मान सम्मान वाली परिस्थितियां मुझे मिली हैं, जो भी ये सुख वाला अगर ये समय आया है, फेवरेबल सिचुएशन जो भी मुझे आई है, ये सारी परिस्थितियां स्थायी नहीं है, है ना। उसके मन में ये भाव नहीं रहता कि मुझे हमेशा ये सुख मिलेगा, उसको समझ आ चुका होता है कि जैसा दुख नहीं रहा तो ये सुख भी नहीं रहेगा। फिर भगवान ने कहा जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। देखो फ्रेंड्स, एक व्यक्ति को संसारिक भोगों से, व्यक्ति से, चीजों से एक्सेसिव अटैचमेंट्स होती हैं, जिसको कि आसक्ति की भी कहते हैं। फिर अगर इन चीजों की प्राप्ति ना हो तो मन में भय आता है, अलग अलग प्रकार के भय होते हैं हमारे अंदर, है ना। तो संसार को भोगने की हमारे अंदर डिजायर्स होती हैं फ्रेंड्स, हर वक्त हमारे अंदर यही डिजायर होती है किस तरह से हम जो भी हमारी वर्ल्डली डिजायर्स हैं उनको किस प्रकार से हम पूरा करें। हर वक्त हमारा मन इन्हीं चीजों को भोगने में लगा रहता है, अपने इंद्रियों को किस प्रकार हम तृप्त करें, बस हमारा मन उसी में लगा रहता है हर वक्त, है ना। तो जब वैसा नहीं होता तो फिर हमारे अंदर क्रोध आता है, हमारे जो अनुकूल रिजल्ट नहीं मिलते हैं लाइफ में, मतलब संसार को भोगने की हमारे अंदर एक्सेसिव अटैचमेंट्स होती है, एक्सेसिव डिजायर्स होती हैं, है ना। तो अगर वैसा नहीं होता फिर हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन जिसके अंदर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाए तो फिर उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, है ना। और जब आसक्ति खत्म होती है तो उसका भय और क्रोध भी खत्म हो जाता है, तब स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो ममता जी। हरि बोल।
अध्याय 2 श्लोक नंबर 57। जो सभी परिस्थितियों में मोह मुक्त है, शुभ की प्राप्ति पर प्रसन्न नहीं होता और अशुभ में दुखी नहीं होता, वह उत्तम ज्ञान में स्थित है। आई रिपीट, जो सभी परिस्थितियों में मोह मुक्त है, शुभ की प्राप्ति पर प्रसन्न नहीं होता और अशुभ में दुखी नहीं होता, वह उत्तम ज्ञान में स्थित है। हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स, पिछले श्लोक में 56 वर्ष में अपनी ड्यूटीज करते हुए, अपने कर्तव्य करते हुए हमारा भाव कैसा होना चाहिए, ये बात भगवान से हमने समझी, है ना। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई जो भी कर्म हम करते हैं, है ना, तो कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाले जो भी फेवरेबल और अनफेवरेबल जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उनमें हमें भगवान सम रहने की बात समझा रहे हैं। मतलब फेवरेबल कंडीशन आ जाए तब भी ये अंदर से भाव होना चाहिए कि ये जो भी सिचुएशन मेरे पास आई है ये स्थायी नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, है ना, ताकि हम घमंड में ना आ जाए
और अगर अनफेवरेबल कोई सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने, है ना, कोई दुख आ जाता है लाइफ में, तो भी ये ध्यान रखना है, ये समझना है अंदर से कि ये सिचुएशन स्थायी नहीं है, टेम्परेरी है, है ना। तो हमें दोनों सिचुएशंस में भगवान संभाव होने की बात समझा रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भाई कौन से लोग ये प्रैक्टिस कर पाते हैं, कौन से लोग पूर्ण ज्ञान में स्थिर होते हैं, जिनको सच में ज्ञान हो जाता है फ्रेंड्स, किसको स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहते हैं फ्रेंड्स, जो उत्तम ज्ञान में स्थित है, मतलब एक्चुअली जिसको ज्ञान हो चुका है, मतलब जिसने उस प्रैक्टिस को अपने अंदर उतार लिया हुआ है ना। एक तो ज्ञान वो हो गया कि आपने आपने इस दुनियादारी में रहते हो, बहुत कुछ सुनते हो, आप सुनते हो और दूसरे कान से निकाल भी देते हो, वो वाले ज्ञान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे भगवद गीता में, ऐसे ज्ञान की बात हो रही है जो मतलब आपके अंदर पक्का स्थित हो जाए, बुद्धि में परमानेंट बैठ जाए जो, है ना। फिर आप हर एक चीज, हर कर्म उस ज्ञान के अकॉर्डिंगली करते हो, फिर उस पर्सन को, फिर ऐसे स्थिर बुद्धि वाले पुरुष को अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, लाभ हानि, जिनको हम द्वंद कहते हैं, वो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष इन सब बातों से ऊपर उठ जाता है, इन द्वंदों से फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स, बाहरी जीवन का रोल प्ले तो अलग होता है, ये बातें ना इंटरनल लेवल की हो रही है। भगवद गीता में जो भी बातें हो रही है ना, आपको इंटरनल लेवल पर इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगी ना कि बाहर तो कुछ भी हो रहा हो जीवन में, लेकिन आपको अंदर से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। मतलब अंदर से हम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं, एक्चुअली प्रैक्टिकल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। देखो फ्रेंड्स, गृहस्थी में तो अगर फेवरेबल कुछ रिजल्ट मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हस्बैंड को प्रमोशन मिल जाती है ना, या बिजनेस में कुछ फायदा हो जाता है, तो आप उस एक्साइटमेंट का हिस्सा तो बनोगे, है ना। नेचुरली वो एक्साइटमेंट तो होगी, आपको भी एंजॉय करोगे आप। और अगर कुछ आपको जॉब में प्रमोशन नहीं मिलती है आपके हस्बैंड को, या मान लो बिजनेस में घाटा हो जाता है, तो बाहर से तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि बड़ा बुरा हुआ, है ना। तो ये तो हो गया संसारिक जीवन, है ना, आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, और आप बोल रहे हो उसको, बाहर आप शो कर रहे हो, है ना। तो ये तो हो गया संसारिक जीवन। देखो भौतिक जगत में तो कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती ही रहनी है, और उसका परिणाम फिर अच्छा बुरे के रूप में हमें लेना पड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं भी जी, उससे जो विचलित नहीं होता, जो अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, लाभ हानि से प्रभावित नहीं होता, उसे समझो कि वे उत्तम ज्ञान में स्थित है, वे पूर्णतया वो ज्ञानी है, और वो भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ता जा रहा है। फ्रेंड देखो, जब तक हम लोग इस संसार में है ना, तब तक तो हमें इस संसार में रहना ही है। इस भौतिक जगत में रहते हुए हम लोग अच्छाई और बुराई में फंसे रहते हैं, क्योंकि ये संसार ही डिजाइंड ही ऐसा है ना, हम चाहते हुए भी इन चीजों से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। जैसे देखो, ये भगवान ने खुद ही कहा है श्लोक में पीछे, है ना, कि जैसे सर्दी और गर्मी आती है, वैसे ही सुख और दुख भी आते रहेंगे, है ना। तो जो भी श्लोकों में फ्रेंड्स हम समझ रहे हैं ना, उसको हमने अपने आत्मा की जर्नी में ना अंदर से चेंजेस लाने के बारे में सोचना है। इंटरनल लेवल पर हमने देखना है कि बाहरी जीवन में अच्छा बुरा, लाभ हानि, ये सब उथल पुथल तो चलती ही रहनी है। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, लाभ हानि, ये मूवी के सीन्स है। और सोचो ना कि हम एक मूवी में रोल प्ले करने आए हैं, हर किसी की लाइफ उसकी एक मूवी है, है ना। तो उसमें उसको अलग अलग प्रकार के रोल प्लेस करने मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक डॉटर का रोल प्ले मिलता है, एक सिस्टर का रोल प्ले मिलता है, फिर हमारी मैरिज होती है तो हमें एक वाइफ का रोल प्ले करने को मिलता है, एक मदर का रोल प्ले करने को मिलता है, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे रोल प्लेस होते हैं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि सिंपल है कि तुम सोचो कि तुम्हें अपने रोल प्लेस कैसे करने हैं, है ना। और वो रोल प्लेस भी बदलते जाते हैं, है ना। और जब हमारे जीवन में उस मूवी में अच्छे सीन आ रहे हैं तो मजा आता है हमें, है ना। कुछ अच्छा होता है, फेवरेबल कुछ मिल जाता है तो हमें मजा आता है, सुख आ रहा है तो हमें मजा आता है। और कुछ बुरा सीन आ जाता है, मूवी में भी बुरा सीन आ जाता है तो हमें दुख मिलता है ना, हमें रोना भी आता है, मूवी में भी हम रो रहे होते हैं। तो ऐसे ही जो हमारी जो मूवी चल रही है, उस मूवी में जो हमें रोल प्लेस करने को मिले हैं, बस उसको बेस्ट वे में कर लो, है ना। लेकिन आपने सोचना क्या है कि ना मुझे अच्छे वाले सीन से अटैचमेंट रखनी है, कि कोई अच्छा सीन आ जाता है तो फिर बड़ा अच्छा लगता है हमें, है ना। अपने जो कंफर्ट जोन है उससे अटैचमेंट नहीं बना लेनी, क्योंकि जब दूसरा सीन बदलेगा तो अगर हम पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे, क्योंकि हमने अटैचमेंट नहीं बनाई हुई है आपने, है ना। तो आपको पता था कि ऐसा होना ही था, सीन तो बदलना ही है। अब हम मूवी देखते हैं तो क्या एक ही फॉर्मेट पे चलती है, उसमें भी तो सीन बदलते रहते हैं ना। उसमें भी एक बच्चे की अगर जर्नी दिखाएंगे तो पहले उसको बचपन दिखाएंगे, बचपन में उसकी कैसे अपब्रिंगिंग हुई है वो दिखाएंगे, है, वो बड़ा हो रहा है, फिर उसके अप्स एंड डाउन दिखाएंगे लाइफ में क्या हुआ उसके साथ, क्या क्या नहीं हुआ, है ना। तो एक तरह की सीन नहीं चलते ना उसके, चाहे उसके लाइफ में बहुत सारे कम्फर्ट्स है ना, बहुत कम्फर्टेबल लाइफ है, लेकिन फिर भी उस मूवी में भी बुरे सीन आते हैं, उसकी दुख वाले सीन्स भी दिखाए जाते हैं उस एक्टर के, है ना। तो इस तरह से जो हमारी ये मूवी है, जो हमारा ये जीवन है, उसमें भी देखो फेवरेबल सिचुएशंस आएंगी और अनफेवरेबल सिचुएशंस आएंगी, सिंपल बात है। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम संभाव रहो, दुख में बहुत ज्यादा डिप्रेस मत हो जाओ, और जब सुख आए तो उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ, दोनों ही चीजें परमानेंट नहीं है, है ना। देखो एक स्टोरी से इसको समझते हैं। देखो एक बिजनेसमैन था, है ना, उसने एक गाय आश्रम में डोनेट कर दी, तो सब जो डिवोटीज थे गुरुजी के, तो वो बहुत खुश थे कि हमें फ्रेश दूध मिलेगा, है ना। और जो वहां पे गुरुजी रहते थे आश्रम में, तो उन्होंने वो भी खुश होगी, चलो अच्छी बात है, दूध दही मक्खन का ईश्वर को भोग लगेगा, तो सब डिवोटीज भी खुश हो जाते हैं। तो एक महीने बाद वो बिजनेसमैन वापस आता है ना, उसको बिजनेस में घाटा हो जाता है, तो उसने कहा कि मैं अपनी गाय वापस लेने आया हूँ। तो सब जो डिवोटीज होते हैं, जो सब शिष्य होते हैं, वो परेशान हो गए और गुरुजी के पास पहुंचते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि चलो अच्छा ही हुआ, भगवान की कृपा। तो वो बड़े ज्यादा शिष्य कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी जब हम गाय लेके वो आया था बिजनेसमैन, तो तब भी आपने कहा था कि अच्छा है, भगवान की कृपा है, और अब तो वो ले गया बिजनेसमैन गाय को, है ना, तब भी आप कह रहे हो कि अच्छा है, भगवान की कृपा है, है ना। क्योंकि पहले तो गाय आई थी तो प्रभु कृपा समझ आती है, बट अब कौन सी कृपा है, क्योंकि अब तो गाय जा रही है। तो गुरुजी ने कहा कि मैं देख रहा था तुम लोगों को एक महीने से, कि तुम कभी गोबर उठा रहे हो, गाय को खाना खिला रहे हो, तुमने तो अपनी साधना ही बंद कर दी। तो मेरे प्रभु ने सोचा कि ये तो भटक गए हैं गाय को संभालने के चक्कर में, ना ये भोग लगा रहे हैं और ना ही माला कर रहे हैं, अपनी साधना भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बेटर ये है कि गाय इनसे वापस ले ली जाए, इसमें प्रभु की कृपा है। तो इस स्टेज पर है ना, है ना। देखो फ्रेंड, जो डिवोटीज थर्ड रीडिंग में स्टार्ट हुए हैं, सेकंड चैप्टर चल रहा है अभी, मान लो आप फर्स्ट चैप्टर से जुड़े हो, है ना, तो उनको क्या लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो डिवोटीज रिव्यूज भी देते होंगे ना, तब भी उनको शक आ जाता होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो भी बातें यहाँ बताई जा रही है वो कैसे सच हो सकती है, भगवद गीता में जो भी चीजें बताई जा रही है वो कैसे सच हो सकती है। फिर डिवोटीज रिव्यू देते हैं कि बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि दो तीन साल से कोई जो चल लेता है उसके साथ सारे अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, कि जो संभाव की बात हम कर रहे हैं, भाव की बात हम कर रहे हैं, तो ये सब बातें जो तीन चार साल से, दो तीन साल से चल रहा है व्यक्ति, उसके 7% में थोड़ी थोड़ी बातें होना शुरू हो जाती हैं, है ना। तो जो बाकी लोग होते हैं, जो 2-3 महीने से चल रहे होते हैं, उनको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, समझ लो आप सब कि जब हम भक्ति के रास्ते पे चलते हैं ना, तो बिल्कुल सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, है ना। और यहाँ पे कोई ऐसा तो कुछ मिलने नहीं वाला, किसी को कोई बोल देगा कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो उसको कुछ तो ऐसे कोई अवार्ड तो मिलने नहीं वाला है, या उसको कुछ कोई प्राइज तो मिलने नहीं वाला है। सब अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं यहाँ पे, जिनके साथ जो होता है। तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप भगवद गीता सुन रहे हो, आप में कोई चेंजेस आती हैं तो अपने अनुभव शेयर करो, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो, वो भी जाने कि नहीं अगर इनके साथ हो सकता तो मुझे भी इस रास्ते पे चलना है, मेरे को भी एक्सपीरियंस करना है लाइफ में, है ना। तो आपको ये सारी चीजें समझने में कोई जोर नहीं लगाना पड़ेगा, हर एक चीज प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिकल हो जाती है फ्रेंड्स। थोड़ा सा अपने आप को पुश तो करना ही पड़ेगा, अब सत्संग तक तो आना ही पड़ेगा, साधना तो थोड़ी करनी पड़ेगी, है ना। तो 1-2 घंटे का टाइम तो अपने लिए निकालना ही पड़ता है ना, वही जो हमने किया नहीं हुआ है कुछ, उसी के लिए थोड़ा सा हमें टाइम भी निकालना पड़ता है, थोड़ा सा जोर भी लगाना पड़ता है। देखो फ्रेंड, जब हम भगवान से कनेक्शन बना लेते हैं ना, तो अपने आप ही भक्ति के रास्ते में चलते चलते ऐसे सिम्टम्स भी आ जाते हैं, जहां आपको बाहरी जीवन के उतार चढ़ाव से, बाहरी जीवन के सुख दुख से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, प्रतिशत में, यानी कि 100% फर्क पड़ना बंद हो जाता है, लेकिन प्रतिशत में फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। जिनकी थर्ड रीडिंग चल रही है, जो चल रहे हैं नित्य निरंतर, उनके साथ प्रभु कृपा से बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होना शुरू हो गए हैं, कि जब वो हर काम में अच्छे बुरे में उलझे रहते थे, अब उन्होंने उलझना बंद कर दिया हुआ, अच्छे बुरे से ऊपर उठना शुरू हो गए। बस हमेशा हमें ये याद रखना फ्रेंड, जो भी भगवान कर रहे हैं ना, वो ही हमारे लिए अच्छा है। जो आज तक हुआ वो सबसे अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भगवान का डिवाइन प्लान है और हमें उस पे विश्वास करके चलना है, सिंपल बात है ना। मन के मुताबिक तो कभी मजा आता है और कभी मजा नहीं आता है। अगर एक व्यक्ति हमेशा ही कंफर्टेबल रहता है, हमेशा ही बस एसी में पड़ा रहता है और कोई काम नहीं करता, वो ज्यादा सीखेगा कि अगर लाइफ में जिनकी बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स आती हैं और उस स्ट्रगल के कारण उसके अंदर ह्यूमिलिटी आती है, कंपैशन बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है ना, भगवान के लिए भी अलग लेवल का सम्मान बढ़ता है ना, लोगों की फीलिंग्स को वो व्यक्ति अच्छे से जान पाता है, बजाय ऐसे कि जो एक व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ता है या उसको बहुत सारे कम्फर्ट मिले हुए हैं लेकिन वो सारे कम्फर्ट्स को कोई अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता, उल्टा वो पतन की तरफ जा रहा है और अब वो गलत काम भी करने लग पड़ा है, बजाय इसके कि जिसको दुख मिल रहे हैं उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती जा रही है और जिसको भगवान ने सारे कंफर्ट दिए हैं, है ना, भगवान ने तो ये सोचकर उसको कंफर्ट दिए कि चलो अब ये मेरे रास्ते में चलेगा, अपना भी भला करेगा और दूसरों का भी करेगा, लेकिन कर लिया उसने उल्टा, अपना पतन करना शुरू कर दिया, अपने आप को और अपने कंफर्ट को वो भोगों में लगाना शुरू हो जाता है, गलत रास्तों में चलने शुरू हो जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर उसकी प्रमोशन थोड़ी होती है आध्यात्मिक रास्ते में, उसकी तो डिमोशन होती जाती है डे बाय डे। फ्रेंड्स, अगर हम आध्यात्मिक रास्ते में चल रहे हैं तो हम समझ जाते हैं कि अगर हमें दुख मिले हैं लाइफ में तो वो भगवान का हमारे लिए एक डिवाइन प्लान होता है। फ्रेंड्स, भगवान हमें बहुत कुछ सिखाते हैं उन दुखों के माध्यम से, बहुत कुछ सीखते हैं हम उन चीजों से, तो जो भी हो रहा है बस ये सोचना है कि भगवान का मेरे लिए परफेक्ट प्लान है। कोई भी सिचुएशन आ रही है मेरे लाइफ में, अगर सुख का समय चल रहा है तो उसको भगवान इसलिए दे रहे हैं कि मैं दूसरों के भले के बारे में सोच सकूं, है ना, कुछ भी अगर मेरे अंदर ज्ञान है तो मैं उसको दूसरों को कैसे, मैं जो अज्ञान के दलदल में कोई फंसा हुआ उसको बाहर निकाल सकूं, किसी के लिए अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं कुछ कर पाऊं, अगर ना भगवान ने मुझे कैपेबल किया है तो थोड़ा सा मुझे उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, और अगर दुख का समय आ गया है तो यही सोचना है कि भगवान इसमें भी मुझे कुछ लर्निंग्स देना चाहते हैं, और उसको दुखों के बारे में सोचते ही नहीं रहना है ना, अगर कोई समय आ गया तो उसमें भी यही सोचना कि आज कैसे मैं बेस्ट कर लूं, सुख आ जाए तब भी परमात्मा को हमेशा याद रखो कि आप हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखो और मैं हमेशा कभी भी आपको ना भूलूं, है ना, और अच्छी तरह से अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहो अगर सुख का समय आया है, क्योंकि सीन्स तो कभी भी बदल जाएंगे, है ना, बस बाहर से अपने रोल प्लेस करते रहो बट अंदर से संभाव मेंटेन रखना है। फ्रेंड्स, है ना, किसको कितने श्लोक आगे कितने संस्कृत में आते हैं इससे उसकी असेसमेंट नहीं होती कि भगवान के रास्ते में कौन कितना आगे बढ़ रहा है, जो श्लोकों में भगवान जो सारी बातें बता रहे हैं 55 वर्स से लेकर लास्ट तक भगवान बताएंगे, स्थिर बुद्धि वालों के लक्षण जो परमात्मा से डीपली कनेक्टेड है उनका व्यवहार कैसा होते हैं इन श्लोकों से हमें पता चलता है ना, तो जो जितना ये कर पा रहा है आप सब भी अपनी अपनी असेसमेंट कर सकते हो कि आप कितना संभाव में रह पाते हो अपनी हर सिचुएशन में, आपके जो भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है आप कितना संभाव मेंटेन कर पाते हो, तो आप भी उतना ही भगवान के रास्ते में आगे बढ़ गए हो, सिंपल अपनी असेसमेंट कर सकते हो, है ना, और जितनी ज्यादा हमारी नाव हिलती है अगर पता चल जाता है अपना, उतना ही समझ लो हमारे अंदर ही कोई कमी, उतना ही हमें सत्संग साधना सेवा सदा चार को बढ़ाने की जरूरत है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने आप को असेस कर सकते हैं। देखो, जब तक हम लोग इस भौतिक संसार में है ना, तब तक सुख दुख अच्छा बुरा लाभ हानि सबका सामना करना पड़ता है ना, लेकिन जो भगवान से नित्य निरंतर जुड़ा हुआ है, या सुख का समय आता है तब भी थैंक यू भगवान, जब दुख का समय आता है तब भी थैंक यू भगवान, जो इस भाव से परमात्मा से नित्य निरंतर जुड़ा रहता है ना, उस पर अच्छाई बुराई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उसका कनेक्शन प्रभु में स्थिर रहता है। ऐसी भक्ति से एक व्यक्ति पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है और स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। फ्रेंड्स, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, एवरीवन हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स, आप रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा या आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स, हरी बोल।
हरी हरी बोल एवरीवन। हां जी मनोज जी, हमेशा की तरह आज का सत्संग भी बहुत दिव्य और आपने बड़े ही अच्छे ढंग से हमें आज का वर्स करवाया, तो इसमें मेरी ये लर्निंग्स बनी है कि हमें जो मनुष्य जीवन मिला है और प्रभु ने हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हैं, हमें जो भी कर्म करने हैं, हमें उनसे बेस्ट वे में करना है। अगर हमारे जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं इसका हमें जो भी फल मिलता है तो उस समय हमें जो है निराश बिल्कुल नहीं होना है। हमें बाहर से चाहे हमें जो भी परिस्थिति हमारे सामने आए, हमें अंदर से यानी हमारे जो अंतःकरण है हमारा, इस पर हमें कोई भी प्रभाव नहीं आने देना है कि हम दुखी हो जाएं। यानी आपने हमें ये समझाया कि हमें संभाव में रहना है, बाहर से हमें मतलब अपना जो रोल मिला है उसे हमें प्ले करना है और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका चाहे जो भी रिजल्ट है उसमें हमें जो है संभाव रखना। जब हम ऐसा करेंगे तो जो है प्रभु भी हमसे खुश होंगे, क्योंकि हम आजकल यही अपना इस बात को समझ रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिन्हें उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया होता है, वो जो है उनके लिए शुभ अशुभ लाभ हानि हार जीत का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, हमें भी इस बात को समझना है, मतलब हमें अपने जीवन में इस बात को शामिल करना है और अपने हमें भी जो है अंदर से परेशान नहीं होना है, चाहे जो भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए। हरी बोल, हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नीना जी, ब्यूटीफुल रिव्यू। और देखो भगवान हमें कितनी छोटी छोटी बातें समझा रहे हैं ना, मतलब अपना भाव भी कैसा रखना है ना, मतलब और क्या कर ले कि मतलब इतना मतलब हाई लेवल का ज्ञान हमें भगवान दे रहे हैं, पर फिर भी हमें सुनना नहीं है। देखो, और सबसे बड़ी बात है ये ज्ञान हमें बचपन से मिलना चाहिए था, ना हमें मिला ना हमने अपने बच्चों को दिया है, सिंपल बात है, क्योंकि हमें पता ही नहीं थी ये सब चीजें। हम भी वो इस दुनियादारी में मस्त थे ना, खोए हुए थे दुनिया में, है ना, इसलिए फिर हम दुख में दुखी हो जाते थे, सुख में सुखी हो जाते थे। अब यही बातें हमें बचपन से पता होती है ना, तो हमारा लाइफ जो आज बहुत ही बेटर होती, मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि लाइफ जीनी आती है हमें, जो हम आज सीख रहे हैं जीना, हमारे आसपास के लोगों को पता नहीं होता, हमें पता नहीं था, तो हमने आगे इस ज्ञान को आगे नहीं अपने बच्चों में नहीं दे पाए, है ना। जितना इतना ठीक है समझ आती है, उतना उतना हम समझा पाते हैं, पर फिर भी जैसे बिल्कुल ही छोटी एज में जैसे बच्चों को समझाना चाहिए, ये चीजें सिखानी चाहिए, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये मतलब ये चीजें हमें बचपन से पता होनी चाहिए थी और हमारे बच्चों को भी पता होनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच नीना जी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम भजन की तरफ चलते हैं। आज भजन की टर्न, ईशा जी आपकी है, भजन गा सकते हो। हरी बोल,
हरी हरी बोल जी। जो आज आपका आपने सत्संग करवाया सच में काफी डिवाइन था, और छोटी चीजें सिखाई है आपने, जो भगवान जी ने हमें बताई है कि किस तरह से हमें, सबसे पहले मेरे हिसाब से कि हमें जो आप ज्ञान दे रहे हो श्रीमद् भागवत गीता का, इसे अपने अंदर फीड करना है, इसको अपने अंदर समाना है। जब हम इसको अपने अंदर समाते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे जो, जिस तरह से आपने बताया कि हमने ड्यूटीज जो करनी है वो एक सेवा भाव से करनी है, जब हम उसको सेवा भाव से करते हैं तो उसके अंदर ये नहीं रहता कोई और स्वार्थ या कोई चीज ऐसी नहीं आती, नेगेटिविटी कोई और अहंकार नहीं आता अगर सेवा भाव से करते हैं। दूसरा है कि समभाव, हमें समभाव तभी रह पाते हैं, तभी रख पाते हैं जब हम इस चीज को अपने अंदर बसाते हैं, जो अपने ज्ञान में भाव कैसे रखने हैं। क्योंकि जब भी हम ज्यादा दुख आएगा तो हमें यही होगा कि भगवान हमारे साथ हैं, हमें नहीं दुखी होना, ये हमारे ही कर्मों का फल है, या जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और अगर ज्यादा अगर कुछ अच्छा होता है तो ये भी उनकी कृपा है, ये समझ कर चलते हैं तो ये हम संभाव रख पाते हैं। और बस मुझे इतना ही इस पे कहना है, कल भजन नहीं गा पाई थी इसलिए मैं आज गा रही हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री भांके बिहारी लाल की जय। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमत नेमतों की तलबदार हूँ मैं, किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबदार हूँ मैं, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है, तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता, तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है, हरी हरी बोल हरी हरी बोल हरी हरी बोल। बहुत ही प्यारा भजन गाया आयशा जी आपने, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स आप प्रेयर कर लेते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल एवरीवन, हरे हरि बोल, गर गर मंदे हर मन मंदे, जय श्री राधे कृष्ण हरे हरि बोल।